अथ सप्तमं प्रकरणम्। पंचम प्रकरण के विषय गुरु ने इस प्रकार वर्णन करा के लय योग का आश्रय करे बिना संसारक व्यवहारों का भक्षेप अवश्य होता है। इसके उत्तर में षष्ठ प्रकरण के विषय शेष ने कहा कि आत्मा के विषय इष्ट अनिष्ट भाव तिस कारण आत्मा का त्याग ग्रहण लय आदि नहीं हुए है। अब इस कथन का ही 5 श्लोकों करके विवेचन करे हैं कि अनंत महाम्भुदो मयि स्वान्त्वातेन विश्वपोता इथा तथा ब्रह्मति मम असिशुणता नयस्ति। मैं चेतन में अनंत समुद्र हूँ और मेरे विषय संसार रूपी नौका मन रूपी वायु के वेग करके चारों ओर को घूमे हैं। ते संसार रूपी नौका के भ्रमण से मेरा मन इस प्रकार चलाए मन नहीं हुए है। जिस प्रकार नौका से समुद्र चलाए मन नहीं हुए है, इस प्रकार यह वर्णन करा है कि संसार के व्यवहारों आत्मा की कोई हानि नहीं हुए है। और अब यह वर्णन करे हैं कि संसार की उत्पत्ति और लय से भी आत्मा की कोई हानि नहीं हुए है। अनंत महाम्भुदो मयि स्वभावता जगदधीचे उदेतु बा अस्तम आयातु मे विरधि न कशति चाना। मैं चैतन्यमय अनंत रूप समुद्र हूँ तिस मेरे आत्मा के विषय स्वभाव करके संसार रूपी तरंगे उत्पन्न हुए हैं और नष्ट हो जावे हैं। तिन संसार रूपी तरंगों के उत्पन्न होने से मेरा कोई लाभ नहीं हुए है और नष्ट होने से हानि नहीं हुए है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। इस कारण मेरी उत्पत्ति नहीं हो सके हैं और मैं अनंत हूँ, इस कारण मेरा लय नाश नहीं हो सके है। इस कहे हुए समुन्दर और तरंग के दृष्टांत से आत्मा के विषय परिणामी पने की शंका हुए है। तिस शंका की निवृत्ति के अर्थ कहे हैं कि अनंत महाम्भुदो मयि विश्वम विकल्पनानाम अतः अहम् अतिशांता निराकारा एतत् एव अवस्था अस्मि। अनंत समुद्र रूप जो मैं तिस मेरे विषय जगत केवल कल्पना मात्र है, सत नहीं है। इस कारण ही मैं शांत कहिए संपूर्ण वकार रहत और निराकार तथा केवल आत्म ज्ञान का आश्रित हूँ। अब आत्मा की शांत स्वरूप रूपता का ही वर्णन करते हैं कि भावेषु आत्मानानं ते निरंजने। तत्र भावा नो इति अहम् असक्ता अस्प्रिया शांता एतत् एव आश्रिता अस्मि। दे इंद्रियादि पदार्थों के विषय आत्मापना अर्थात सतपना नहीं है, क्योंकि दे इंद्रियादि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और नष्ट हुए हैं, और दे इंद्रियादि रूप उपाधि आत्मा के विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है। इस कारण ही इच्छा रहत और शांत तथा तत्व ज्ञान का आश्रित हूँ। आत्मा इच्छा आदि रहत है, इस विषय में और हेतु कहे हैं कि अहो अहम् चिन्मात्रम् एव जगत् इंद्रे जा लोपमम् अतः मम हे उपादे कल्पना कुत्र कथम स्यात्। अहो मैं अलौकिक चैतन्य मात्र हूँ, और यक्त इंद्रजाल कहिए बाजी करके चरित्रों के समान है। इस कारण किसी पदार्थ विषय मेरे ग्रहण करने की और त्यागने की कल्पना किस प्रकार हो सके हैं, अर्थात ना तो मैं किसी पदार्थ को त्यागे हूँ और ना ग्रहण करूँ हूँ। अथ अष्टमं प्रकरणम्। इस प्रकार शेष प्रकरणों करके अपने शिष्य की सर्वथा परीक्षा लेकर बंद मोक्ष की व्यवस्था वर्णन करने के मिश्य से गुरु अपने शिष्य के अनुभव की चार श्लोकों करके प्रशंसा करे हैं कि यदा चित्तं किंचित् वांछति शोचयति किंचित् मुच्यति गृहजति किंचित् हयति कुप्यति तदा बंधा भवति। हे शिष्य, तैने जो कहा कि मेरे को आत्मा को कुछ त्याग करना और ग्रहण करना नहीं है, सो सत है, क्योंकि जब चित्त किसी वस्तु की इच्छा करे है, किसी वस्तु का शोक करे है, किसी वस्तु का त्याग करे है, किसी वस्तु का ग्रहण करता है, किसी वस्तु से प्रसन्न होता है अथवा कोप करता है, तब ही जीव का बंध होता है। यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुच्यति न गृहजति न हरिष्यति न कुप्यति। जब चित्त इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, किसी वस्तु का त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता तथा किसी वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता है और कारण होने पर भी कोप नहीं करता है, तब ही जीव की मुक्ति होती है। इस प्रकार बंद मोक्ष का भिन्न भिन्न वर्णन करा। अब दोनों इकट्ठा वर्णन करते हैं। यदा चित्तम कासुअपि दृष्टिषु त्यक्तं सुतक् सुतक्तुम तदा बंधा यदा चित्तम सर्वदृष्टिषु असक्तम तदा मोक्षा। जिसका चित आत्मपिन किसी भी जड़ पदार्थ के विषय असक्त हुए हैं तब जीव का बंध होता है, और जब चित आत्मपिन संपूर्ण जड़ पदार्थों के विषय असक्ति रहित हुए है तब ही जीव का मोक्ष हुए है। संपूर्ण विषयों के विषय चित असक्त न हुए ऐसी साधन संपत्ति प्राप्त होने पर भी अहंकार दूर हुए बिना मुक्ति नहीं होती है। कहते हैं कि जदा अहं न तदा मोक्षा, जदा अहं तदा बंधनम इति मत्वा हेलया किंचित मा ग्रहण मा विमुख बेमुंच। जब तक मैं देह हूं इस प्रकार अवमान रहता है तब तक ही यह संसार बंधन रहता है, और जब मैं आत्मा हूं देह नहीं हूं इस प्रकार का अवमान दूर हो जाता है तब मोक्ष होता है। इस प्रकार जानकर व्यवहार दृष्टि से ना किसी वस्तु को ग्रहण कर ना किसी वस्तु का त्याग कर। अथ नवम प्रकरणम। ऊपर के प्रकरण के विषय गुरु ने कहा कि ना किसी वस्तु को ग्रहण कर ना त्याग कर, तहां शेष प्रश्न करे हैं त्याग की क्या रीति है। तिसके समाधान में गुरु 8 श्लोकों करके वैराग वर्णन करे हैं के कृता कृते द्वंद्वानि कस्या कदा न शांतानि एवं ज्ञात्वा एह निर्वेदात त्याग परहा अवतिभव। कृत और अकृत अर्थात यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए इत्यादि अविनिवेश और सुख दुख शांत शीतोष्ण आदि द्वंद्वों किसी के कवि शांत हुए हैं अर्थात कवि किसी के निवृत्त नहीं हुए। इस प्रकार जानकर इन कृत अकृत और सुख दुख आदि के विषय विरक्ति होने से त्याग प्रायण और संपूर्ण पदार्थों के विषय आग्रह का त्यागने वाला हो। चित्त के धर्मों का त्याग रूप वैराग तो किसी को ही होता है सबको नहीं। यह वर्णन करते हैं लोक चेष्टा बलोकनाथ कस्या अपि धनस्या जीवतिच्छा बुभुक्षा बुभुत्सा चै उपशमम गथा। हे शेष सहस्रों में से किसी एक धन पुरुष को ही संसार की उत्पत्ति और नाश रूप चेष्टा के देखने से जीवन की इच्छा और भोग की इच्छा तथा जानने की इच्छा निवृत्त होती है। तहां से शंका करे हैं कि ज्ञानी पुरुषों की जो संपूर्ण विषयों में आसक्ति नष्ट हो जाती है उसमें क्या कारण है। तहां कहते हैं कि ता ताप्त त्रय दूषतम इदम सर्वम एव अनित्यम असारम निंदितम हेयम इति निश्चितम ज्ञानी शाम्यति। जै सुपूर्ण जगत अनित है, चैतन्य स्वरूप आत्मा की सत्ता करके सुफुर्त हुए है, वास्तव में कल्पना मात्र है और अध्यात्मक अधिभौतिक और अधिदैवक और अधिभौतिक इन तीनों दुखों करके दूषित हो रहा है, अर्थात तुच्छ है, झूठा है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष उदासीनता को प्राप्त होता है। अब यह वर्णन करे हैं कि सुख दुख आदि द्वंद्व तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अवश्य ही प्राप्त हो गए, परंतु तीन सुख दुख आदि के विषय इच्छा और अनिच्छा का त्याग करके प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों को भोगता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। यत्र निर्णाम द्वंद्वानि नो संति असो का काला किम बया तानि उपेक्ष यथा प्रस्वर्ति सत् सन सिद्धम अवमुआत। ऐसा कौन सा काल है सिद्धम अवपुआत, ऐसा कौन सा काल है कि जिसमें मनुष्य को सुख दुखादि द्वंद्वों की प्रतीति न हो, प्रीति न हो। और ऐसी कौन सी अवस्था है कि जिसमें मनुष्य को सुख दुखादि न हो, अर्थात जिसमें मनुष्य को सुख दुखादि नहीं होते हो। ऐसा ना कोई समय है और ना कोई ऐसी अवस्था है, सर्वकाल में और सब अवस्थाओं में सुख दुख तो होते ही हैं। ऐसा जानकर तीन सुख दुख आदि के विषय संकल्प विकल्पों को त्यागने वाला पुरुष प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए सुख दुख आदि को असक्ति रहत भोग कर सिद्धि कहिए मुक्ति को प्राप्त होता है। अब इस वार्ता को वर्णन करते हैं कि तत्व ज्ञान के सिवाय अन्यत्र किसी विषय में भी निष्ठा न करे। मेषीणाम साधूनाम तथा योगीनाम नानामत्तम दृष्ट्वा निर्भेदम आपन्हा का मानवा न शम्यति। ऋषियों के भिन्न भिन्न रीति के नाना प्रकार के मत हैं, तिनमें कोई होम करने का उपदेश करते हैं, कोई मंत्र जप करने का उपदेश करते हैं, कोई चंद्रायण आदि व्रतों की महिमा वर्णन करते हैं। इसी प्रकार साधु कहिए भगत पुरुषों के भी अनेक भेद और संप्रदाय हैं, जैसे के शैव शाक्त वैष्णव आदि, तथा योगियों के भी मत योगियों के मत भी अनेक प्रकार के हैं। इसमें कोई अष्टांग योग की साधना करते हैं और कोई तत्वों की गणना करते हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के मत होने से कारण तिन सब को त्याग कर वैराग को प्राप्त हुआ कौन पुरुष शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु शांति को प्राप्त होएगा ही। अब यह वर्णन करते हैं कि कर्म आदि का त्याग करके केवल ज्ञान निष्ठा का ही आश्रय करना चाहिए। निर्वेद समता मुक्त्या चैतन्यस्या मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा या न के गुरु सा संसिद्धे तारयति। निर्वेद कहिए वैराग अर्थात विषयों के विखे असक्ति का न करना, और समता कहिए शत्रु मित्र आदि सब के विषय समदृष्टि रखना अर्थात सर्वत्र आत्मदृष्टि करना, तथा युक्ति श्रुतियों के अनुसार शंकाओं का समाधान करना। इनके द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करके फिर कर्म मार्ग के विषय गुरु का आश्रय न करने वाला पुरुष आत्मा को तथा औरों को भी संसार से तार देता है। चैतन्य स्वरूप के साक्षात करने का उपाय कहते हैं कि हे शिष्य भूत बकारान यथार्थता भूत मात्रान पच्छय एवं त्वं तत्क्षणात् बंधन निर्मुक्ता स्वरूपस्था भविष्यसि। हे शेष भूत वकार के ये दे इंद्रे आदि को वास्तव में जड़ जो पंच महाभूत तिनका वकार जान, आत्मा स्वरूप मत जान, आत्मा स्वरूप मत जान। यदि गुरु श्रुति और अनुभव करके ऐसा निश्चय कर लेगा तो तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त होकर शरीर आदि से विलक्षण जो आत्मा तिस आत्मा स्वरूप के विषय स्थिति को प्राप्त होएगा, क्योंकि शरीर आदि के विषय आत्मा भिन्न जड़त्व आदि का ज्ञान होने पर तिन शरीर आदि का साक्षी जो आत्मा सो शीघ्र ही जाना जाए है। इस प्रकार आत्म ज्ञान होने पर आत्मा ज्ञान के विषय निष्ठा होने के लिए वासना के त्याग करने का उपदेश करते हैं कि वासना एव संसारिति सर्वा विमुच्यतता विमुच्यता तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिर द्वैत अध त्यागा अध स्थिति यथा तथा संसार वासना एविति ता सर्वा बेसुच्चा वासना त्यागात् तत्यागा अध्या स्थिति यथा तथा। विषयों के विषय वासना होना ही संसार है, इस कारण शिष्य तीन संपूर्ण वासनाओं का त्याग कर वासनाओं के त्याग से आत्मनिष्ठा होने पर ते संसार का स्वयं त्याग हो जाए है, और वासनाओं के त्याग होने पर भी संसार के विषय शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्मों के अनुसार रहती है। अथ दशमं प्रकरणम्। पूर्व में विषयों के बिना भी संतोष रूप से वैराग का वर्णन करा, अब विषय तृष्णा के त्याग का गुरुपदेश करे हैं। बैरीणम कामम अनर्थ संकल्पम अर्थम चा तथा इत्यो हेतुम धर्मम अपि विहाय सर्वत्र अनाद्रम कुरु। हे शेष ज्ञान का शत्रु जो काम तिसका त्याग कर और जिसके पैदा करने में रक्षा करने में तथा खर्च करने में दुख होता है, ऐसे सर्वथा दुखों से परे हुए अर्थ कहिए तन का त्याग कर तथा काम और अर्थ दोनों का हेतु जो धर्म तिसका भी त्याग कर धन और तदनंतर धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के हेतु जो सकाम कर्म तिन के विषय असक्ति का त्याग कर तहां शेष शंका करे हैं कि स्त्री पुत्र आदि और अनेक प्रकार के सुख देने वाले जो कम तिन का किस प्रकार त्याग हो सके है, तहां गुरु कहे हैं कि हे शेष त्रीणी पंचवा दिनानी सुथान्या मित्र क्षेत्र धना गार दार दायादि संपदा स्वप्निंद्रे यालवत पक्ष तीन अथवा पांच दिन रहने वाले मित्र क्षेत्र धन स्थान स्त्री कुटुंबी आदि संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की समान अनित्य जान। अब यह वर्णन करते हैं कि संपूर्ण काम कर्मों में अनादर करना रूप वैराग ही मोक्ष रूप पुरुषार्थ का कारण है। यत्र यत्र वै यत्र यत्र तृष्णा भवेत तत्र संसारम विधि तस्मात् प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित बीत तृष्णा सन सुखी भव। जहां जहां विषयों के विषय तृष्णा हुए तहां ही संसार जान, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्मों के द्वारा संसार का हेतु होती है। तिस कारण दृढ़ वैराग का अवलंबन करके अप्राप्त विषयों में इच्छा रहित होकर आत्मा ज्ञान की निष्ठा करके सुखी हो, उपरोक्त विषयों को ही अनरीति से कहते हैं। बंधा तृष्ण मात्रात्मका तन्नाशा मोक्षा उच्यते पवा संसक्ति मात्रेण मुहुर्मुहु प्राप्ति तुष्टि स्यात्। हे शेष तृष्णा मात्र ही बड़ा भारी बंधन है और तिस तृष्णा मात्र का त्याग ही मोक्ष कहता है, क्योंकि संसार के विषय असक्ति का त्याग करके बारंबार आत्मज्ञान में से उत्पन्न हुआ संतोष ही मोक्ष कहता है। तहां शंका हुए है कि यदि तृष्णा मात्र ही बंधन है तब तो आत्म प्राप्ति की तृष्णा भी बंधन हो जाएगी। तहां कहते हैं कि त्वम एका चेतना शुद्धा असि विश्वम जड़म तथा असत अस्ति अविद्या अपि किंचित न तथा तेसा विभुत्सा अपि का। इस संसार में आत्म, जगत और विद्या ये तीन ही पदार्थ हैं। तिन तीनों में आत्म तू तो अद्वितीय चेतन और शुद्ध हैं। तिन चैतन्य स्वरूप पूर्ण रूप आत्मा के जानने की इच्छा तृष्णा बंधन नहीं हुए है, क्योंकि आत्मा भिन्न जड़ पदार्थों के विषय इच्छा करना ही तृष्णा कहावे है, क्योंकि जड़ और अनित्य होने के कारण जगत के विषय इच्छा करना बंध्या पुत्र की समान मिथ्या है। उस इच्छा से किसी प्रकार की सिद्धि नहीं हुए है। इसी प्रकार माया के जानने की इच्छा तृष्णा करना भी निरर्थक ही है, क्योंकि माया सतरूप करके अथवा असतरूप करके कहने में नहीं आवे है। जब संसार की जड़ता और अनित्यता को दिखाए हैं कि संसक्तस्या अपि तब राज राज्यम सुता कल्त्राणि शरीराणि सुखानि चै जन्म निजन्मनि नष्टानि। हे शेष राज, पुत्र स्त्री शरीर और सुख इनके विषय तैने अत्यंत ही प्रीति करी, तब भी जन्म जन्म में नष्ट हो गए। इस कारण संसार अनित्य है, ऐसा जानना चाहिए। अब धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग की इच्छा का निषेध करे हैं। अर्थेन कामेन सोकृतेन कर्मणा अपि अलम यता संसार कांतारे एभया मना बेशरंतम न अभूत। हे शेष, धन के विषय काम के विषय और सकाम कर्मों के विषय भी कामना न करके अपने आनंद स्वरूप के विषय परिपूर्ण रह, क्योंकि संसार रूपी दुर्गम मार्ग के विषय प्रमता हुआ मन इन धर्म अर्थ काम से विश्राम को कदाप नहीं प्राप्त होएगा, तो कदाप संसार बंधन का नाश नहीं होएगा। अब क्रिया मात्र के त्याग का उपदेश करे हैं कि हे शेष असाध्यम दुखम कर्म कायेन मनसा गिरा कति जन्मनि जन्मनि न कृतम तत् अद्य अपि उपरामताम। हे शेष, महाकलेश और दुखों का देने वाला कर्म काय मन और वाणी करके कितने जन्मों पर्यंत नहीं करा, अर्थात अनेक जन्मों में करा, और तिन जन्म जन्म के करे हुए कर्मों से तैने अनर्थ ही पाया। इस कारण अब तो तिन कर्मों का त्याग कर। अथ एकादशम प्रकरण। पूर्वोक्त शांति ज्ञान करके ही होती है, अन्यथा नहीं होती है। इसका बोध कराने के लिए निमित्त आठ श्लोकों करके ज्ञान का वर्णन करते हुए प्रथम ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हैं। पाशाभाव विकारा पामभावाभाव विकारा स्वभावात जायते इति निश्चय पुरुषा निर्वकारा गत कलेशा चासन सुखेन एव उपशान्त्यति। किसी वस्तु का भाव और किसी वस्तु का अभाव, जय जो विकार है सो तो स्वभाव कहिए माया और पूर्व संस्कार के अनुसार हुए है। आत्मा के सकाश से नहीं हुए है, ऐसा निश्चय जिस पुरुष को हो जाता है वह पुरुष अनायास से ही शांति को प्राप्त हो जाता है। तहां से शंका करे है कि माया तो जड़ है, उसके सकाश से भावाभाव रूप संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हो सके है, ते इसका गुरु समाधान करे हैं कि ए सर्व निर्माता ईश्वरा अन्य न इति निश्चयी पुरुषा अंतर गलत सर्वशा शांता सन का कपि न सज्जते। संपूर्ण जगत रचने वाला एक ईश्वर है, अन्य जीव जगत का रचने वाला नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वर के वशीभूत है। इस प्रकार निश्चय करने वाला पुरुष ऐसे निश्चय के प्रभाव से ही दूर हो गई है सब प्रकार की तृष्णा जिसकी, ऐसा और शांत कहिए निश्चल चित होकर कहीं भी असक्त नहीं होता है। तहां शंका होती है कि यदि ईश्वर ही संसार को रचने वाला है तो किसी पुरुष को दरिद्र करता है और किन्हीं को धनी करता है और किन्हीं को सुखी करता है तथा किन्हीं को दुखी करता है। इस कारण ईश्वर के विखे विषम और नैर्घृण दोष आवेगा। तहां कहते हैं कि काले आपदा सपदा चा दैवात ए भवन्ति इति निश्चय तृप्ता पुरुषा नित्यम स्वस्थेन्द्रिया सन न वाशति न शोचयति। किसी समय में आपत्तियों और किसी समय में संपत्ति में जय अपने प्रारब्ध से होती है। इस कारण ईश्वर के विखे वैषम और नैर घृण दोष नहीं लग सकता। इस प्रकार निश्चय करने वाला पुरुष सब प्रकार की तृष्णाओं से रहत और विषयों करके चलायमान नहीं हुई है इंद्रिय जिसकी, ऐसा होकर अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता है और नष्ट हुई वस्तु का शोक नहीं करता है। कहां से शंका करे है कि हे गुरु, पूर्वोक्त निश्चय जो पुरुष भी कर्म करता हुआ देखने में आवे है, सो कैसे हो सके? तो इसका गुरु समाधान करे है कि सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवात एव भवन्ति इति निश्चय साध्यादर्शी निर्यासा पुरुषा कर्माणि कुर्बन अपि न लिप्यते। कर्म के फल रूप जो सुख दुख और जन्म मृत्यु व प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, इस प्रकार निश्चय वाला पुरुष ऐसी दृष्टि नहीं करे है कि अमुक कर्म मुझे करना चाहिए और इस कारण ही कर्म करने में परीक्षम नहीं करे है और प्रारब्ध कर्मानुसार कर्म करके लिप्त भी नहीं हुए, अर्थात पाप पूर्ण रूप फल का भोगने वाला नहीं हुए हैं, क्योंकि उस पुरुष को मैं करता हूँ ऐसा अवमान नहीं हुए है। तहां शंका हुए है कि यह कैसे हो सके हैं कि कर्म करके पाप पूर्ण रूप फल का भोगता ना हुए। तहां कहते हैं कि एह दुखम चिंत्या जायते अन्यथा नाइति निश्चयी पुरुषा तथा हीन सन सुखी शांता सर्वत्र गलत सप्रिया भवती। इस संसार के विषय दुख मात्र चिंता से उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय वाला चिंता रहित पुरुष शांति तथा सुख को प्राप्त होता है और उस पुरुष की संपूर्ण विषयों से अभिलाषा दूर हो जाती है। पूर्वोक्त साधनों करके युक्त ज्ञानियों की दशा निरूपण करते हैं कि अहम देहा न मे देहा न किंतु अहम बोधा इति निश्चय पुरुषा केवलम संप्राप्ता एव कृतम अकृतम न स्मरति। मैं देह नहीं हूँ तथा मेरा देह नहीं है, किंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिस पुरुष को निश्चय हो जाता है वह पुरुष ज्ञान के द्वारा अवमान का नाश होने के कारण शोक्ति दशा में प्राप्त हुए पुरुष की समान कर्म अकर्म का स्मरण नहीं करता, अर्थात उसके विषय लिप्त नहीं होता है। आ ब्रह्म तप्रयतम अहम एविति निश्चय पुरुषा निर्वकल्पम वकल्पहा शुचि तथा शांता सन प्राप्ता प्राप्त विनिवृत्ता भवति। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत मैं ही हूँ, इस प्रकार निश्चय वाले पुरुष के संकल्प कल्प नष्ट हो जाते हैं, बेशासक्त रूप मल से रहत हो जाता है। उस पुरुष का महापवित्र जो आत्मा सो प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की इच्छा से रहत होकर परम संतोष को प्राप्त होता है, तहां शंका हुए है कि ज्ञानी के संकल्प विकल्प स्वयं ही किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। नाना आश्चर्यम इदं विश्वं किंचित् न इति निश्चयि पुरुषा निर्वासन सुपुर्ति मात्रा सन्न किंचिति इति शम्यति। अधिष्ठान रूप ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान होने पर जगत कल्पत प्रतीत होने लगता है और नाना रूप वाला जगत भी ज्ञान का आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण जगत मेरी आत्मा की सत्ता से ही सुफुरत होता है। ऐसा निश्चय होते ही ज्ञानी की संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है और चैतन्य स्वरूप हो जाता है और उसको कोई व्यवहार शेष नहीं रहे है। इस कारण शांति को प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञानी की कार्य कारण रूप उपाधि नष्ट हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी को संपूर्ण जगत स्वप्न की समान पासने लगता है। अथ द्वादश प्रकरणम पूर्व प्रकरण के विषय ज्ञानष्ट करके वर्णन करे हुए विषय को ही शेष अपने विषय दिखावे है कि पूर्वम काये कृत सह तथा भाग वस्त्र सह भाग वस्त्र सह अथ चिंता सह तस्मात् अहम् एवं एव आवश्यकता अस्मि। शेष कहे हैं कि हे गुरु, प्रथम इन्हें आपकी कृपा से कायिक विषयों क्रियाओं का त्याग करा, तदनंतर वाणी के जप रूप कर्म का त्याग करा, इस कारण ही मन के संकल्प कल्प रूप कर्म का त्याग करा। इस प्रकार मैं सब प्रकार के व्यवहारों का त्याग करके केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय करके स्थित हूँ। अपरोक्त तीन प्रकार के कायक आदि व्यापारों के त्यागने के कारण दिखावे हैं। त्यागने में कारण दिखाए हैं कि शब्दाधे प्रीत भावेन आत्मना चा आदृष्ट्वेन बक्षेप अकागर हृदया अहम् एव एवं एव अवस्थिता अस्मि। नाशवान फल के उत्पन्न करने वाले शब्द आदि विषयों के विषय प्रीति न होने से और आत्मा के आदृश होने से मेरा हृदय तीनों प्रकार के बक्षेपों से रहत और एकाग्र है। अर्थात नाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले जाप आदि के विषय प्रीति न होने से तो मेरे विषय जप रूप बक्षेप नहीं है और आत्मा आदृश्य है, इस कारण आत्मा ध्यान का विषय नहीं है, इस कारण चिंता रूपी मन का बक्षेप भी मेरे विषय नहीं है, इस कारण मैं आत्मा स्वरूप करके स्थित हूँ। तहां शंका हुए है कि किसी प्रकार का बक्षेप न होने पर भी समाधि के अर्थ तो व्यवहार करना ही पड़ेगा, तिसका समाधान करते हैं कि समाद्या साधि बक्षिप्त सत्याम समाधि व्यवहारा भवति एवं निजमं बलोक अहम एवं एव आस्थिता अस्मि। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास रूप बक्षेप होए, अर्थात मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इत्यादि मिथ्या अध्यास रूप बक्षेप यदि होए, तो उसकी निवृत्ति के अर्थ समाधि के निमित्त व्यवहार करना पड़ता है। यदि ऐसा अध्यास नहीं हुए है तो समाधि के निमित्त व्यवहार नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार के निजम को देखकर शुद्ध आत्म ज्ञान का आश्रय लेने वाले मेरे विषय अध्यास न होने के कारण समाधि शून्य मैं आत्मा स्वरूप के विषय स्थित हूँ। हे ब्रह्मन हे उपादे बृहात एवं हर्ष विषाद्यो अभावात अद्य अहम एवं एव आवश्यकता अस्मि। शेष कहे हैं कि हे गुरु मैं तो पूर्ण स्वरूप हूँ, इस कारण किसका त्याग करूँ और किसका ग्रहण करूँ, अर्थात ना मेरे को कुछ त्यागने योग है और ना कुछ ग्रहण करने योग है। इसी प्रकार मेरे को किसी प्रकार का हर्ष शोक नहीं है, मैं तो इस समय केवल आत्म स्वरूप के विषय स्थित हूँ। आश्रय मानाश्रम ध्यानम चित स्वीकृत वर्जनम इत एव मम विकल्पम वीक्ष्य अहम एवं एव अवस्थास्मि। मैं मन और बुद्धि से पार हूँ, इस कारण मेरे विषय वर्ण आश्रम के विषय बेहत ध्यान कर्म और संस्कार विकल्प नहीं है, मैं सबका साक्षी हूँ, ऐसा विचार कर आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। यथा ज्ञानात् कर्म अनुष्ठानम तथा एव उपरम भवतीदम तत्वम सम्यक बुद्धा अहम एवं एव आवश्यकता अस्मि। जिस प्रकार कर्म अनुष्ठान कर्म करना अज्ञान से ही हुए है, तिस प्रकार की कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है, क्योंकि आत्मा के विषय त्यागना और ग्रहण करना कुछ भी नहीं बने है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं आत्मस्वरूप के विषय ही स्थित हूँ। अचिंत्यम चिंत्यमानः अपि असौ चिंतरूपम भजति तस्मात् तद्भावनम त्यक्त्वा अहम् एवम् एव आस्थिता अस्मि। अचिंत जो ब्रह्म है तिसको चिंतन करता हुआ भी जय पुरुष आत्म चिंतामय रूप को प्राप्त होता है, तिस कारण ब्रह्म के चिंतन का त्याग करके मैं आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। जेन एवं एव कीर्तम सा असौ कीर्तार्था भवेत या एवं एव स्वभावा सा असौ कृतार्था भवेत। जिस पुरुष ने इस प्रकार आत्मस्वरूप को साधनों के द्वारा सर्व क्रिया रहित करा है वह कृतार्थ है, और जो बिना साधनों के ही स्वभाव से क्रिया रहित शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान वाला है, उसके कृतार्थ होने में तो कहना ही क्या है।